Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Adiguru Shankaracharya Virachit दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतम यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा वै स्पन्दते जानामीति तमेव वान्त्यन्त्येतत्समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिम् च शून्यम् विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशम्वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये वाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरत्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वास्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत स्वप्ने जाग्रति वा यये सपुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये भोरम्बांस निलो निलो मरमहर नाथो हिमांसु पुमान इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वम् स्वतः सिद्धे तत्पुनरस्तदा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्। दक्षिणामूर्ति का प्रसंग चल रहा है। भगवान की जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति के चलते बड़े से बड़े विचारक और विद्वान भी व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं, मोह को प्राप्त करते हैं। परिणाम ये होता है कि जो वस्तु जैसा है पारमार्थिक, उसको उसी रूप में अनुभव नहीं कर सकते। व्यामोह, माया का व्यामोह है ये। अन्यथा अन्यथा निश्चय करते हैं और यही कहते हैं कि यही मेरा सिद्धांत सत्य है, यथार्थ है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि भ्रांत पुरुष यदि कोई कह दे कि ये बात सही है, तो समझदार पुरुष को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं। भ्रांत पुरुष कोई कह दे कि ये बात सही है, तो समझदार पुरुष को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं, नहीं कहना चाहिए। मदिरा के नशे में धुत हुआ हुआ व्यक्ति यदि कोई कह दे कि ये बात है, तो नशा रहित व्यक्ति, होश वाला व्यक्ति को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? बोले सभी नशे वाले हैं और सभी यही बात करेंगे तो फिर क्या करना चाहिए? अरे भाई, कोई ना कोई तो एक होश वाला होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जगत में सभी नशे वाले हैं। यदि सभी नशे वाले हैं तो ये सब नशे वाले हैं कहने वाला कौन होगा? है, सभी नशे वाले हैं तब फिर ये नशे वाले हैं ये बात कहने वाला कौन होगा? एक तो होश वाला होना चाहिए कि नहीं। हाँ, सबके सब माया के व्यामोह में पड़कर अन्यथा अन्यथा करके निश्चय करके वाद विवाद कर रहे हों, तो उन वाद विवाद के बीच में कोई निर्विवाद यथार्थ सत्य को बताने वाला सामने आना चाहिए। और जब सामने वाला आता है और कह देता है कि ये वस्तु तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ये सही है, तब वो बात उन नशे वाले को भी स्वीकार करनी पड़ेगी, तब जब उनके नशा उतर जाता है। तो यही है, सबसे पहले नशा उतारना पड़ेगा। सही बात समझाने के लिए भी होश वाले व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, होश वाले व्यक्ति को, नशड़ियों को सही बात समझाने के लिए भी सबसे पहले उनका नशा उतारना पड़ेगा, तभी उसको सही बात समझाया जा सकेगा। नहीं तो होश वाला व्यक्ति लाख कोशिश करे, नशा उतारे बिना सही बात समझाने के लिए वो सफल नहीं होगा। तो कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी, नहीं जवाहरलाल नेहरू जी पहले बार रांची गए, कहते हैं, है ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद। देखें तो सही, रांची में उस जेल में रहने वालों का हाल क्या है। रांची में तो पहले तो एक ही हॉस्पिटल था, है ना, रांची में मेंटली हॉस्पिटल पागलों का हॉस्पिटल था, वो पागलखाना, तो वो उसका निरीक्षण करने के लिए चले गए कहते। जब वो अंदर घुसे तो सब पागल लोग हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। किस लिए हंसने लगे तो पूछा तो बोले एक और पागल आ गया। तो पागलों के समाज में समझदार भी पागल ही होता है, है? इसलिए नशेड़ियों के समाज में होश वाला व्यक्ति भी नशेड़ी ही होता है। तो उनकी बात होश वाले व्यक्ति को अपनी बात समझानी हो तो उनके नशा को उतारे बिना समझाने लगे तो लाख कोशिश करे नहीं समझा पाएगा। तो सबसे पहले उनको उसके नशे को उतारना होगा, तब फिर उसको अपनी बात समझानी होगी। और नशे के उतर जाने के बाद हर व्यक्ति बात समझ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नशे उतर जाने के बाद न समझा हो, समझ जाता है। ये प्रसंग ठीक लगभग इसी प्रकार का है। ये जो छठा श्लोक है आज की जो व्याख्या श्लोक है छठा, राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादना सन्मात्रह करणोपसंहरणतो यो भूत सुसुप्तः पुमान प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। इससे पहले ये बात पांचवें श्लोक के द्वारा शंकराचार्य ने ये कह दिया है, माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह, उस व्यामोह के चलते सभी लोग अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, अन्यथा होता हुआ आत्मा को अन्यथा ही मानता है, सच्चिद आनंद अद्वितीय आत्मा को असत जड़ दुख रूप और द्वैत रूप मानने लग जाता है। इसका कारण क्या है? माया शक्ति विलास कल्पित महासम्मोह, इसी के चलते ऐसा हो रहा है। तो उस समझदार गुरु जो दक्षिणामूर्ति गुरु मूर्ति हैं, शिव हैं या गुरु हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सही बात को समझाने के लिए उसकी नशे को उतारते हैं, व्यामोह संहारिणे। भगवान शिव की कृपा हो तब ये अनादि व्यामोह, अनादि व्यामोह उसका संहार होगा, ये जड़ से ये नशा उतरेगा। भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तब जाकर जड़ से ये नशा उतरेगा। गुरु नानक कहते हैं कि दो प्रकार के नशे हैं जगत में, गांजा भांग अफीम मद, गांजा भंग अफीम मद उतर जात प्रभात। ये जो चार नशे हैं ये तो शाम को सेवन करो सुबह उतर जाता है, लेकिन एक नशा ऐसा है कि एक बार चढ़ा तो फिर कभी नहीं उतरता। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो तो न रात में उतरता है न दिन में उतरता है, एक बार चढ़ना है, बार बार चढ़ना भी नहीं है, एक ही बार चढ़ना है। और ये और जो चार नशे हैं तो बार बार सेवन करो बार बार उतरता है, बार बार सेवन करो बार बार उतरता है। इसी प्रकार के ये माया मोह रूपी जो नशा है वो एक बार चढ़ा था जीव को, पता नहीं कब चढ़ा था, ये तो न जीव को पता है न शिव को पता है, पता नहीं कब चढ़ा था, एक बार चढ़ा था बस, अनादि सृष्टि है। शिव को जीव मानने की जो मान्यता है वो भी अनादि है। आपने अपने को जीव कब से मानना शुरू किया है? आपने अपने को जीव कब से मानना शुरू किया? अनादि है। इसलिए अनादि मोह माया है ये। ये ऐसा चढ़ गया है कि ये अपने आप उतरने वाला नहीं है। चढ़ तो अपने आप गया है लेकिन उतरेगा नहीं अपने आप, कोई उतारने वाला होना चाहिए। इस नशे को उतारने वाला कोई होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया गीता में, दैवी है सा मम माया दुरत्या गुणमयी, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये अपने आप छोड़कर जाने वाली नहीं है, इसको तो तुम चाहो कि मैं छोड़ू तो भी नहीं छूटने वाली है। होता है ना, आप लोग शादी करते हो तो कभी कोई गलत स्त्री के साथ विवाह हो गया, उसके साथ जीवन व्यतीत करना दुभर हो गया, कठिन होने लगा, तो वहां बात चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए, छूट जाए, तलाक हो जाए। लेकिन कानून यह है कि एक तरफ से होता नहीं है, दो तरफ से होनी चाहिए। तो अभी तो शायद कानून में कुछ सहूलियत कर दिया, ऐसा कुछ दिन पहले के पेपर में था। तो यदि सामने वाले भी राजी न भी हो तो पेपर सबमिट होने के बाद उसको लंबाया जा नहीं सकता, एक तरफी फैसला करके भी डिवोर्स हो सकता है, ऐसा कुछ संशोधन कर रहे हैं, ऐसा सुना है। तो ऐसे जो व्यक्ति है, या अन्यथा नहीं लेना माताओं, फिर आप लोग ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि यहां माया का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए मैं माया के बारे में कह रहा हूं। तो आप भी पुरुष हैं, है? इसके सामने, माया के सामने तो आप भी पुरुष हैं, और वो माया आपकी स्त्री है, और क्योंकि वो आपसे चिपक गई है, आप डिवोर्स लेना चाहते, वो मानती नहीं है, है ना? आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो मानती नहीं है। आप चाहते हैं कि छूट के चला जाए, ये इसके साथ मेरा जीना दुभर हो रहा है, कठिन हो रहा है। माताओं, आप लोगों का ऐसा हो रहा है कि नहीं, बोलो, है? उसके साथ शादी करके पश्चाताप हो रहा है कि नहीं? न जाने कब शादी किया था, किया, वो मरती भी नहीं है, है? न वो मरती है न छोड़ती है, मर जाए तो भी झंझट छूटे। नरसिंह मेहता ने कहा, इस तरह प्रसन्न हो गए वो, भलो थयो भागी जंजाल, मर गई तो अच्छा हुआ। और ये स्त्री ऐसी जबरी है कि न मरती है न छोड़ कर जाती है। अब क्या करोगे भाई? तो हैरान पड़। तब फिर एक ही उपाय है, भगवान ने कहा, ये तुझे अपने आप छोड़ के भी नहीं जाएगी, और तू यदि उसको धक्का मारकर निकालना चाहेगा तो नहीं जाएगी। फिर महाराज, इससे कैसे छुटकारा होगा? तो गीता में कह दिया है, दैवी है सा मम माया गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। मेरे शरण में यदि तू आ जाएगा तब फिर मेरे इशारा से ये छोड़ देगी। हाँ, क्योंकि ये जो माया है मेरी माया है, माया मेरी है, तूने न जाने कब भोगने के लिए अपना अपना लिया था। हमने कहा कि तू अपना रहा है, इसके द्वारा सुखी होता है तो हो ले, है? तूने पहले विचार नहीं किया कि इसको अपना से पहले ये किसकी है। हम भी यही करते हैं, उसको अपनाने से पहले विचार नहीं किया कि ये किसकी है। उसी समय विचार किया होता तो आज ये पश्चाताप न होता, सुखदेव को नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया ये किसकी है, है? उन्होंने कहा कि ये तो परमात्मा की है, परमात्मा की है तो फिर मैं कैसे इसका भोगूं, इसको मैं कैसे अपना सकता हूं? दूसरे की चीज मैं यदि जबरदस्ती इसको अपनाऊंगा तो मुझे दुख होगा, अशांति होगी। तो सुखदेव जी ने कहा कि जिसकी है उसी के पास रहे, हमारे पास ना आवे, यही अच्छा है। हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, नहीं मिला उसको, नहीं मिला तो सुखी हो गए वो, हुए कि नहीं? सुखदेव सुखी हुए, है? और हमें पता नहीं कहां से हमारी मति मारी गई थी, किस दिन हमारी मति मारी गई, कैसे मारी गई, ये भी हमको पता नहीं है। किस दिन मारी गई, ये भी हमको पता नहीं है। क्यों मारी गई, ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन मारी गई हमने अब दूसरे की चीज को चाहा और फंस गए। अब क्या करोगे? तो रो उसके सामने। किसके सामने? बोले जिसकी है उसके सामने। जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसके सामने रोने से फायदा नहीं, वो तो और हंसेगा, वो तो और हंसेगा। तो यही कहा ना गीता में भगवान ने, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है तो वो व्यक्ति इससे आराम से छूट सकता है। माया मेताम एताम मायाम ते तरंती तरंती ते, आराम से वो छुटकारा मिल सकता है उसको। उसको पता ही नहीं चला गया कि ये माया कब चली गई, मान ही नहीं होगा, चली जाएगी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि वह ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के संकल्प से परिचालित है। तो ये ईश्वर की कृपा से ही व्यामोह का संहार होगा। तो ऐसे जो व्यामोही हैं, उन लोगों के मत मतांतर को यहां पूर्व पक्ष के रूप में शंकराचार्य जी ने उठाया। ऐसे व्यामोहियों में से शून्यवादी बौद्ध और क्षणिकवादी बौद्ध, बौद्ध का ये दो भेद हैं, एक शून्य को यथार्थ मानने वाले, पारमार्थिक मानने वाले, असत को, अभाव को, शून्य को सारे जगत का उपादान कारण मानकर उसी शून्य से सारा जगत उत्पन्न हुआ ऐसे मानने वाले, दूसरे लोग नहीं क्षणिक विज्ञान को मानने वाले, क्षणिक आत्मा, आत्मा क्षणिक है ना। तो ये दोनों के मोह को भंग करने के लिए शंकराचार्य जी ने इस छठे श्लोक में बड़े सुंदर युक्तियों से उनके व्यामोह को भंग किया है। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरणतो यो भूत सुसुप्तः पुमान् प्रागप्स्वाप्समिति प्रबोध समये या प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। सबसे पहले दृष्टांत दिया, आप दृष्टांत समझोगे तब सिद्धांत यानी दृष्टांत को आसान से समझ पाओगे। इसलिए वेदांत की प्रक्रिया है कि हर बात को समझाने के लिए कोई न कोई दृष्टांत उपस्थापित करते हैं, दो चीज तीन चीज का प्रयोग करते हैं वेदांत। सबसे पहले तो श्रुति के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं, प्रमाण सगवर और प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं, उससे नहीं बना तो श्रुति प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं अपनी बात स्थापित करने के लिए, सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए। दूसरी बात, उस श्रुति के अनुसार दृष्टांत को प्रस्तुत करते हैं, और दृष्टांत का शब्द का अर्थ ही होता है आपके द्वारा देखा गया को प्रयोग करना, आपके अनुभव में आए हुए को प्रयोग करना, इसका अर्थ होता है दृष्टांत। दृष्ट अंत सिद्धांत दृष्टांत, आपके अनुभव में आए हुए युक्तियों का प्रयोग करना, आपने देखे हुए को ही प्रयोग करके न देखे हुए को समझाना। देखो, न देखे हुए को दिखाने का उपाय क्या है? देखे हुए का प्रयोग करना, देखे हुए का प्रयोग करके न देखे हुए को दिखाना है। अनुभव में आए हुए को प्रयोग करके अनुभव में न आए हुए का को अनुभव में लाना है, इसको कहते हैं दृष्टांत। यहां सबसे पहले शंकराचार्य जी ने दृष्टांत दिया, वो पौराणिक दृष्टांत, आज का वैज्ञानिक दृष्टांत नहीं है, ये वैज्ञानिक लोग इस बात को नहीं मानते, पौराणिक दृष्टांत। ये दृष्टांत कोई वैदिक भी नहीं है, कोई आधुनिक भी नहीं है, ये दृष्टांत पुराण काल का पौराणिक दृष्टांत है। आप लोगों को आपके नाना नानियों ने दादा दादियों ने सुनाया ही होगा, समुद्र मंथन हुआ था, ये भी कहानी सुनाया होगा ना, और उन्होंने नहीं सुनाया होता, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुराणों में पढ़ा होगा कि समुद्र मंथन हुआ था। एक बार की बात है कि पृथ्वी में कोई ऐश्वर्य नहीं था, जो ऐश्वर्य थे वो 14-14 ऐश्वर्य रत्न वो सब के सब देवताओं के अपराध से चलते पृथ्वी से वह पाताल में चला गया था। ये भी नहीं कि देवलोक में था, देवताओं के अपराध के चलते, गलती के चलते, दुरुपयोग के चलते ये 14 रत्न चतुर्दश रत्न पाताल में चले गए थे। भारत में नवरत्न बोलते हैं ना, कि कोई बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नवरत्न बोलते हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको नवरत्न बोलते हैं, बड़ी फैक्ट्री है। तो यहां तो 14 रत्न है, भारत तो केवल 9 रत्न, बाकी रत्न कहां चले गए, 5 रत्न उसकी है। इसीलिए भारत में कमी है, कमजोरी है, गरीबी है। वो 5 रत्न और आ जाए तो फिर भारत की गरीबी खत्म हो जाए। ये तो मैं मजाक कर रहा हूं। वो 5 रत्न के 50 रत्न आ जाए तो भी ये गरीबी खत्म नहीं होगी, क्योंकि गरीबी खत्म करना ही नहीं है। किसको, कोई राजकारणी हो तो फिर नाराज नहीं हो जाना, ये राजनेताओं को गरीबी खत्म करना ही नहीं है। गरीबी खत्म हो गई तो राजनीति खत्म हो गई है। तो इसीलिए उनको तो चाहे 500 रत्न आ जाए तो भी देश को गरीब बनाए ही रखना है, उनकी उनके फायदे में, उनके हित में, क्योंकि राजनीति करने को मिलती है। तो चला गया समुद्र में, अब क्या करें, रत्न रहित है, ऐश्वर्य रहित है, और उसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है किसको, तो देवताओं को। तो देवता लोग छटपटाने लगे, गए भगवान नारायण के पास, महाराज हम क्या करें, देखो हमारे सारे ऐश्वर्य गायब हो गए, सारे रत्न गायब हो गए, हम निरीह हो गए हैं, कुछ नहीं है हमारे पास।